श्लाघ्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे कृष्णवर्णाशु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्तकंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी मान कुते देवी हा देवी का कुहर गद गद याद वाचा जाचे निपत्त भूवि दंडवत उद्भटारती अस्य प्रसादमबुदस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके तव गणे गणन अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे दुखेन्दे वरं जाट्वं जागुदरोच समुदिदतं पट्टं मरस्य वृन्दारण्य निवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्द निवेशितो जलभुजं ध्यायेम् भक्त्या विघ्नापराधलक्ष्यै चित्त्वास्तुतामाप्रसन्नमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना भुञ्जे नमस्ते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वैराग्यजगुभक्तिरसंप्रयत्न अपायन्मानं कृपाम्बुदिरिज परदुःख दुःखी सनातनस्तं प्रभुमाश श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जीवं स्वयं रूपः कदा मह्यं ददा यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकात्तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयम् आज नित्यानंद त्रयोदशी है। पहले गया अद्वैताचार्य का सप्तम, फिर एकादशी आई और फिर नित्यानंद प्रभु जी की ये त्रयोदशी। अब ये सूचना करती है कि चैतन्य महाप्रभु भी
आने वाले हैं,
शुद्ध ही आने वाले हैं। वो भी अब सप्तमी आई ना, जिसके बाद में आई एकादशी, फिर नित्यानंद त्रयोदशी, अब इसके बाद में त्रयोदशी के बाद में पूर्णिमा आएगी। इसलिए पूर्णिमा को चैतन्य महाप्रभु पूर्ण रूप में
इस पुण्य वाले के बाद
वे कभी भी वो आए। आज नित्यानंद प्रभु जी थे यथा सब थी, कुछ महिमा गान करने के लिए चेष्टा करेंगे। अब तुम लोग बोलेगा कि हम ही बोले, हम ही बोले, तुम लोग नहीं बोलेगा देखो भाई एक दिन एक नाई था, नाई बार बार ये कमाने वाला, तो कहीं न्योता देने के लिए जा रहा था। पहले नाई का काम ही होता था किसी के घर में शादी या कोई उत्सव होगा तो न्योता लेकर के जाता था, सब लोगों को निमंत्रण देता था और उसके लिए उसको कुछ मिलता था। तो नाई निमंत्रण देने के लिए, किंतु नाई कहीं भी जाता था या जाएगा अपना हथियार छोड़ करके नहीं जाएगा, हथियार अपना अस्तुरा उस्तुरा नहरनी कैंची कंघी ये सभी चीज़ कैंची भी और सब कुछ ले करके वो जाता, तो वो ले करके चलता क्या हो गया? नित्यानंद जी की महिमा बतला रहा हूँ। तो वो सब लेकर के चला तो गया तो देखा जंगल के अंदर में जंगल एक पड़ा। तो जंगल पड़ा तो उसने देखा एक सिंह रास्ते पर सोया है, उस पर आक्रमण नहीं किया, सोया हुआ है और पैर को उठा करके ऐसे ऐसे कर रहा है। तो नाई डरा नहीं, पहले तो डरा किंतु पीछे से देखा मालूम होता है जिसके पैर में कुछ चुभ गया है इसलिए आक्रमण नहीं कर रहा है, इसलिए वो निकट चला गया और तीन पैर तो उसने समेट करके वो बैठा हुआ है किंतु चौथा पैर को बाहर सामने वाला ऐसे ऐसे करता है। तो एकदम निकट पहुंच गया और उसके पैर को पकड़ करके देखा जी इसमें भाई कुछ है क्या। तो देखा एक लोहा का कोई चीज अथवा कांटा बड़ा सा मोटा है, बहुत दूर तक घुस गया है और इसलिए वो बड़ा कष्ट में है, इसलिए उस कांटे को जब नहर ने निकाली थोड़ा सा इधर उधर किया और कांटे को पकड़ करके छट खींच करके, और उसके साथ में ये था सफेद क्या
फटकरी
फटकरी इत्यादि करके लगा दिया। पहले तो खून कुछ आया तो कुछ पत्ते फत्ते ले लिए, गेंदे के पत्ते टत्ते लेकर के लगा दिया और वो चला गया। एक वर्ष दो वर्ष के बाद में, दो वर्ष हो गया, तीन वर्ष चार वर्ष हो गया, एक दिन यही नाई किसी काम में पकड़ा गया, राजा ने इसको पकड़ा, राजा के आदमियों ने उसे पकड़कर ये बड़ा भारी कठिन कठोर जुर्म किया है, किसी को मारा है या कुछ ऐसी बात है, तो राजा के सामने उसको पेश किया। राजा ने कहा कई दिन हुए जंगल से एक शेर पकड़ा गया है, तो शेर के खांचे में इसको फेंक दो, शेर इसको खा जाएगा, बस इसके लिए दूसरा दंड नहीं, बस यही दंड दे दो, बस उसको शेर के पिंजड़े में फेंक दिया। शेर एकदम भयानक गर्जन करते हुए उस पर टूटा, किंतु जब निकट आया तो पूंछ डुलाते हुए और दोनों पैर से पहले बैठ गया और पूंछ डुलाने लगा और उस पर आक्रमण करके उसे मारा नहीं। वो जो शेर था वही शेर था जिस नाई ने जिसके कांटे निकाले, और इतने वर्षों बाद भी उसको झट पहचान गया और उसके बदले में उसको मारा नहीं, मारा नहीं। राजा ने कहा जी ये क्या बात है जी, इसे उसको नहीं मार रहा, एक हिंस जंतु और इस नाई को मार नहीं रहा, क्या बात है? विचार किया जब इसको एक पशु हिंस यदि नहीं मार रहा तो शायद मैं गलती पे हूँ, इसको पकड़ लिया है और इसको दंड के लिए दिया है, एक पशु तक भी इसको यदि नहीं मार रहा तो ये कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया होगा जो कि दंड देने लायक। फिर उसे निकाल करके उसका आदर सम्मान करके क्षमा मांग करके उसको छोड़ दिया। एक पशु में भी कितनी कृतज्ञता होती है, एक कांटा निकाला ना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु जी ऐसे ही कृतज्ञ हैं, कह रहे हैं कि मैं बचपन में हम दो भाई थे, पहले कृतज्ञता को मैंने बताया कि कृतज्ञता किसको कहते हैं, एक लौकिक कृतज्ञता में इतना है, एक दिन एक मिनट के लिए कांटा निकाल दिया और उसके प्रति वो कृतज्ञ रहा कितने वर्षों तक, जिंदगी भर उसके लिए, एक हिंस पशु जो सब लोगों को खाता है ऐसा हिंस पशु भी, और उसके प्रति सारा जीवन कृतज्ञ रहा। नित्यानंद प्रभु के जीवन चरित्र में भी ऐसा ही देखते हैं, नित्यानंद प्रभु जी स्वयं भगवान होकर के भी कैसे कृपा करते हैं उसके उदाहरण देकर के चैतन्य चरितामृत में बतला रहे हैं कृष्णदास होता है। हम दो भाई थे, बड़े भाई और मैं, पिताजी नहीं थे। एक दिन हमारे भाई कुछ धार्मिक थे, मैं ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, उन्होंने अष्ट प्रहर कीर्तन का रखा था, आठ प्रहर कीर्तन होगा, दूर दूरंत से भी वैष्णवों को बुलाया गया, उसमें बड़े बड़े दूर दूरंत से वैष्णव लोग सब आए, निकट के भी आए। उसमें नित्यानंद प्रभु के पार्षद परिकर राम केतन
मीन केतन
रामदास आए। उनका ये था, उनकी कृपा को सहज ही नहीं आदमी समझता था, किंतु लोग समझ गए थे देखते देखते। यदि कोई प्रिय व्यक्ति आ जाता, उनको प्रणाम करता, तो उनके हाथों में बंसी होती, चाबुक रहता है, तो बंसी से एक बंसी मार देते तो समझो कि उनकी बहुत कृपा हो,
चढ़ जाती था,
किसी के सिर पर पैर रख दे समझे जो उसका जीवन का कल्याण हो गया। किसी को थप्पड़ भी चप्पड़ मारते थे, अरे तू इतना दिन हम कहां रहा, प्रेम की चाबुक भी किसी को चला देते, लोग समझते थे। आज जिसको उन्होंने मार दिया समझो जैसे नित्यानंद प्रभु जी की साक्षात कृपा हो गई। तो वो भी आए, कीर्तन चल रहा था, सब लोग उठ के खड़े हुए और उनका अभिवादन, किसी के कंधे पर चढ़ जाते, किसी को थप्पड़ मारते, किसी को कूच, किसी के पीठ पर चपड़ाते, ऐसे आंखों से आंसुओं की धारा गिरती रहती। नित्यानंद प्रभु का करके हुंकार, जय नित्यानंद
प्रभु जी,
ऐसे हुंकार करते, गर्जन करते, और ऐसा किया था। वहां पर एक पुजारी था, कुछ पढ़ा लिखा था पुजारी, तो पुजारी सब लोगों ने प्रणाम किया, उठा, सब कुछ किया, किंतु वो उठा नहीं और न उनसे कुछ संभाषण भी किया। प्रभु कैसे हैं, निकट जाकर के प्रणाम तो करना चाहिए, तो उसने कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये तो ऐसे ही हंसते हुए और कह दिया, ये तो द्वितीय लोमहर्षण है ये, और ये कह करके नित्यानंद प्रभु का गुणगान करने में लग गए। खूब जोरों से कीर्तन किया, सब कुछ हो गया। जब कीर्तन समाप्त हो गया, हो रहा है, इनके बड़े भाई के पास में जाकर के कहा कि अब मैं चल रहा हूं, और उसी में कुछ दो एक बातें हो गई, ये नित्यानंद जी की महिमा का गुणगान करने लगे। तो उसने कहा कि नित्यानंद जी का आप गुणगान करते हैं, महाप्रभु जी का आप गुणगान नहीं करते। तो उनको कुछ बड़ा दुख हुआ, ये नित्यानंद प्रभु जी में और महाप्रभु जी में कुछ भेद समझता है। नित्यानंद प्रभु की जितनी भी गाथाएं हैं, महिमाएं हैं, वो तो महाप्रभु जी से संबंधित हैं। जैसे कोई राधा जी की महिमा का गुणगान कर रहा हो, तो कृष्ण का गुणगान हुआ कि नहीं हुआ, राधा जी कृष्ण की सबसे बड़ी प्रिया है, ये सबसे उन्हीं की सेवा करती है, राधा जी से बढ़ करके और कोई नहीं है, राधा जी का चरण का आश्रय लेने से ही समस्त जितनी प्रकार की आशा आकांक्षाएं हैं सब पूर्ण हो जाती हैं। राधा जी का महिमा कहना माने क्या है? चैतन्य महाप्रभु जी का जो यदि कोई महिमा वर्णन कर रहा है तो ये क्या है? वो सब राधा और कृष्ण की महिमा का ये वर्णन है। उनकी महिमा इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। उनकी महिमा राधा कृष्ण की ही महिमा ही महाप्रभु। उनको कुछ दुख हुआ ये ऐसा है। अजय आप सब समय नित्यानित्यानंद करते हैं, महाप्रभु का गुणगान करते हैं कि न सब समय नित्यानंद है नित्यानंद। उन्होंने तब तुम्हें शादी कर ली थी, महाप्रभु तो जैसे के तैसे रहे, घर छोड़ कर कर दिया, या कुछ ऐसे बातें हुई होंगी जैसे बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के अपनी बंसी वहां पर बड़ा दुख हुआ, दुख होकर अपनी प्रिय चीज को दी और चले गए। मन ही मन में कुछ होगा कहीं ये इसका कल्याण कैसे होगा और चले गए। जाते जाते ही उसका सर्वनाश हुआ। सर्वनाश माने क्या? भक्ति चित्त भक्ति से ही भक्ति रही नहीं। जिन संतों की कृपा से भक्ति होती है और वो संत ही यदि अप्रसन्न हो जाएं तो भक्ति व्यक्ति रह सकती है? नहीं रह सकती। उसका हुआ सर्वनाश, पाखंडी हो गया। और इन्होंने कहा कि ऐसे पाखंडी का मैं संग नहीं, भाई को भाई नहीं मानता। वो बंधु बंधु नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो स्वजन स्वजन नहीं है। जो कृष्ण की भक्ति दे करके और हमारा कल्याण नहीं करता उसे कोई भी संपर्क नहीं। गुरु न शश्चात, स्वजनु न शश्चात, पिता न शश्चात, जननी न शश्चात, नमो चेत जसमुदे। जो कृष्ण भक्ति की शिक्षा दे करके हमारा कल्याण न कर। इसलिए रात में कहा जब इस घर में पाषंडी के घर में अब नहीं रहना है, इसका अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, इसका मुख नहीं दर्शन करूंगा। बस उसी रात में ही 3-4 बजे रात में ही दर्शन कर जाकर के बड़े दुखी हो रहे थे। इसलिए गांव के पासी में जाकर के बाहर में कुछ बैठ गए, सोचने लगे क्या करूं, अब यहाँ नहीं रहना है किंतु जाऊं कहाँ। यही सोचते सोचते उनको कुछ स्वप्न सा हुआ। स्वप्न सा माने क्या? नींद भी नहीं, स्वप्न भी नहीं,
तंद्रा।
तंद्रा में देखा जे नित्यानंद प्रभु प्रकटित, हाथों में सोने का बेत है, बड़ा प्रकांड शरीर है, श्यामल कांति है, कानों में कुंडल, एक कान में कुंडल है, अद्भुत शरीर उनका, जैसे कृष्ण लीला में बलदेव प्रभु का, किंतु वो गौ और ये श्याम बस किसी रूप में। देखा जे तुम रोता क्यों है, चिंता क्यों करता है, उठो उठो उठो, तुम बंदा बन जाओ। रूप सनातन के उनके सिर पर चरण अपने रख दिए। जाओ, तुमने हमारे लिए अपने भाई का त्याग कर दिया, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर में बहुत प्रसन्न हैं। भाई भाई वही है जो भक्ति दे सके, पिता पिता वही है जो भक्ति की शिक्षा दे सके, गर्भधारिणी माता वही है जो कृष्ण की भक्ति दे सके। तो हमारा थोड़ा सा इसने अपमान किया, आज इसके लिए तुमने अपने प्रिय भाई को सदा के लिए छोड़ दिया, मैं प्रसन्न हूँ। तुम जाओ वृंदावन, वहाँ गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी का दर्शन करेगा, रूप सनातन जी की कृपा पाएगा, वृंदावन धाम की कृपा पाएगा, तुम जाओ। तो ये कह रहे हैं मैंने एक भाई को थोड़ा सा के लिए छोड़ दिया और नित्यानंद प्रभु की इतनी महती हमारे ऊपर में कृपा हुई, जिनकी कृपा से मैंने वृंदावन का दर्शन किया। वृंदावन का दर्शन कैसा दर्शन किया? हमारे जैसा ऐसा दर्शन किया। कृष्ण गोचारण में जा रहे हैं, गोपियां उनके दर्शन के लिए त्रिषित नैनों से, उनकी नैनों से आरती उतार रही हैं। राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन किया, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन का दर्शन किया। तो रूप सनातन की कृपा माने क्या? उनकी कृपा माने क्या? सनातन जी के की कृपा से उनको जितना भी संबंध ज्ञान और जो कुछ भी हुआ शास्त्रीय ज्ञान ये सब हुआ, और ज्ञान होने पर भी रस नहीं हो सकता है, रस का विचार। गुरु गोस्वामी की कृपा से उनको भक्ति रस का ज्ञान हुआ और तब वो चैतन्य चैतामृत जैसे ग्रंथ और वो अष्टकालीन गोविंद लीलामृत और सब ग्रंथों के रसिक टीकाएं की। यदि रूप गोस्वामी नहीं होते, उनके ग्रंथ नहीं होते, तो हमारा ग्रंथ, हमारा सब कुछ भी शून्य होता, उनकी कृपा का। संसार में आदमी यदि एक कांटे को निकाल देने से है? एक पशु भी जो सबको मारता है वो भी सारा जीवन के लिए उसका ऋणी हो गया। जिन्होंने भवसागर का कांटा निकालने की चेष्टा की और भक्ति रस पिलाने की चेष्टा की, ऐसे गुरु वैष्णवों को के प्रति यदि कोई नमक हराम हो, उसकी कृतज्ञता को न माने, तो बतलाओ तो क्या होगा उसकी। यह काल वो काल दुकाल खवाई में खाई लू आप माथा हो जाए। इसलिए खुद जगत में हम उसी के ऋणी हैं। गुरु के किस लिए हम ऋणी हैं, वैष्णव के किस लिए ऋणी हैं? इसलिए, इसलिए यही दो कारण से कांटा निकालता है। कांटा वो क्या है, भव का कांटा है, कंटक कोटि रुद्धा उसको निकाल देता है ये। और क्या करता है, रस पिला देता है। रस क्या, कृष्ण का, राधा जी का रस, राधा रस सुधा निधि और भक्ति रसामृत सिंधु में उसे डुबा देता है। ऐसे गुरु और वैष्णव के प्रति यदि कोई एक दिन के कुछ कहने से कुछ यदि कह दिया है और उसको ताजे हमको कोई स्नेह नहीं करते तो वैसा ही दुर्भागा है। इसलिए हम लोग गुरु वैष्णव के प्रति सदा ऋणी रहेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की ये याद रखेंगे हम। स्वयं कृष्ण का एक प्रधान गुण है कृतज्ञता, और वैष्णव यदि कृतज्ञ नहीं हुआ, और कृतज्ञता से कभी भी कोई ऋणी हो सकता, वो ऋण हो सकता है गुरु वैष्णव के ऋण से कभी नहीं। जो नहीं समझता दुर्भागा है, जो समझते हैं वो सदा के लिए वैसा ऋण, मरने पर भी सारा जीवन उस ऋण को कभी नहीं भूलते, जन्म जन्मांतर में नहीं भूलते। ऐसे नित्यानंद प्रभु जी स्वयं भगवान हो करके भी, कृष्ण स्वयं भी भगवान हो करके भी उनके ऋण से कभी भी पूरे नहीं। कृष्ण ने भी कहा ना, न पा रहे हम निर्वध जिन्होंने गृह की श्रृंखलाओं को, बेड़ियों को तोड़कर हमारे लिए आई, केवल मेरे लिए, मेरी सेवा की, लोक की परवाह नहीं की, दुस्तज घर गृह इत्यादि सब को छोड़ करके हमारे लिए आए। जो लोग हमारे लिए स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति और परिवार सब कुछ छोड़ करके हमारे लिए भजन करते हैं, मैं इनको कभी छोड़ सकता हूं? मैं कभी नहीं छोड़ सकता। एक श्लोक इन्होंने लिखा, संकर्षण कारण को यशाई गर्भो दशाई चपयो दशाई शेषस्य जस्यांश कला नित्यानंद राम शरण। पति विश्वनाथ ये चैतन्य चैतन्य कृष्ण लोक बैकुंठ से बढ़कर के कोई स्थान नहीं, और इस बैकुंठ में कुछ विभाग है, कुछ विभाग है ऐसे ऐसे ना? चौड़ाई में, और कुछ भाग है ऊंचाई में ना? निशिंग कल्कि बामन इत्यादि जितने भी अवतारों के जो वैकुंठ में धाम वो सब चौड़ाई में है। तल्ला तो एक ही वही तल्ला है किंतु प्रकोष्ठ के विभाग और ऊंचाई में निचाई से आरंभ यदि करें तो उसका प्रारंभ विरजा से हम यदि करें तो पहला सिद्ध लोग वैकुंठ का वो एक तरह से वो है प्राचीर दिया प्राचीर का बाहरी भाग जिसको सिद्ध लोग कहते हैं वो वैकुंठ के नीचे जिसमें वो शत्रुओं को मार करके भगवान हतारि गत गायब कृष्ण स्वयं मार करके उनको गति देते हैं और वह सिद्ध लोग वे सिद्ध लोग जो अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि का मैं ही ब्रह्म। अभी कल परसों हम लोग एक जगह गए सुना जो यहाँ पर प्रवचन करते थे कौन डोंगरे महाराज डोंगरे तो डोंगरे जी अभी कुछ दिन हुआ पाँच छः महीने अभी तीन चार महीने काशगंज में सबसे अंतिम उनका प्रोग्राम रखा था तो वहाँ पर नहीं कर सके उसके पहले किया
सुकरतला
यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत सुनाया वही उनका अंतिम था और उसके बाद में वहाँ काशगंज में था तो कर न सके फिर अपने आश्रम में चले गए। जिस अस्पताल में मैं था हिंदुजा अस्पताल में वहाँ पर भी कुछ दिन के लिए 10-5 दिन के लिए आए थे उन्होंने डिक्लेयर कुछ कर दिया कि अब ये पधारेंगे अब रहेंगे नहीं इस जगह तो अंत में वो चले गए। तो एक आदमी निकट दर्शी प्रत्यक्ष दर्शी कह रहे थे ठाकुर जी की तरफ में पीठ मत करो भैया तो उन्होंने कहा कि जाते समय अंत समय में उन्होंने ऐसे अंगूठा से इसको हिला दिया तो साधारण आदमी नहीं समझ सके ये क्या इसका मतलब किंतु जो उनके विशेष पारदर्शी और बहुत उन्नत विचार वाले जो भक्तों थे और हम लोगों ने वो जो कह रहे इसका ये अर्थ लिया वृद्धांगुली ब्रह्म और ये कनिष्ठांगुली अंत में ले बड़ी उनकी प्रशंसा की ये कहने से इसके साथ में भी मिल गए। हमने कहा जैसे ये उनका परम भारी सौभाग्य था उनका था त्रिपति विनाश था यहाँ पर मैंने ये दोनों मिल गया एक हो गया तो यहाँ पर इसका अर्थ वो लगाएंगे जी जीव ब्रह्म में मिल गया एक हो गया किंतु ये अंगुलियां तो मिली किंतु दोनों अंगुलियां एक हो गई मिल तो गई अंत में यहाँ किंतु यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक तो ये तो दोनों दूर रहे किंतु मिल गई। तो वो सिद्ध लोक में वो लोग जाते हैं जो अपने को कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ और ये दोनों मिलकर के वो समझते हैं जैसे हम भी ब्रह्म हो गए किंतु दोनों मिली नहीं अंगुलियां यहाँ से यहाँ तक ये रही यहाँ से यहाँ तक रही ये मोटी रही ये पतली रही दोनों एक मिलकर के यदि हो गई होती ऐसे जुट जाती तब तो होता किंतु ऐसे तो मिली नहीं। हाँ ऐसे मिली जैसे हम सभी लोग मिल करके हरि कथा कह रहे हैं ये सभी का मिलना है तो जीव ऐसे मिलता है ब्रह्म के साथ में जैसे कृष्ण गोपियों से सखाओं से नंद बाबा यशोदा जी से रामचंद्र जी हनुमान से मिलते हैं ये तो मिलना ठीक है किंतु दोनों मिलकर के एक हो गए ऐसा कहीं भी कोई उदाहरण नहीं है दो मिले तो किंतु अलग अलग रहते हुए इसमें मिले उनकी अलग अलग सत्ता है जीव कभी भी ब्रह्म नहीं होगा लोगों की ऐसी सब धारणाएं इतने बड़े पंडित विद्वान, लाखों लोग उनके भाषण सुनने के लिए आते हैं, और अंत में और कहते हैं कि कृष्ण के भक्ति के समान और कोई चीज नहीं है, और गोपियों की भक्ति अंत में सबसे श्रेष्ठ है, और वो यदि ऐसे मिल जाए ब्रह्म से, एक हो जाए, तो वो हरि कथा का मूल्य क्या रहा? उनका कहना सब बेकार था, लोगों को एक धोखा देना था। इसलिए आप लोग ब्रजवासी उन कथाओं में मत जाएंगे, जो कादे जय राधा कृष्ण से हम मिल गए तो वो सिद्ध लोक नीचे है, है? ये असुरों को मार करके गति सिद्ध लोक को देते हैं, उसके ऊपर में सदाशिव लोक है, नहीं? उसके ऊपर में चतुर्भुज मुक्ति वाला नारायण का धाम, सालोक्य, सामित्य, सारुक्य और शास्त्र, ये चार प्रकार की मुक्तियों को देकर के, भक्तों को देकर के अपने पास रखते हैं, और भक्त लोग भगवान नारायण की सेवा करते हैं ऐश्वर्य भाव से। उसी के आसपास में करोड़ों प्रकोष्ठ है, उसमें बरा नृसिंह कल्कि जो कल उसमें उसने वर्णन किया, वो सब उनका प्रकोष्ठ, जब जिसकी जरूरत होती है जगत में उतार उतारते हैं, इसलिए अवतार कहलाते हैं, और नहीं तो सब समय अपने भक्तों के साथ में वहां पर क्रीड़ा विनोद में पड़े रहते हैं। इसके ऊपर में तब रामचंद्र जी का लोक है, उसके ऊपर में कृष्ण लोक है, कृष्ण लोक को गोलोक कहते हैं। गोलोक कहने से भी आप लोगों को एक विषय में संदेह हो रहा होगा, उसको मैं थोड़ा सा निराकरण कर दूं। जब कृष्ण का अभिषेक हुआ, इंद्र ने किया ना, इंद्र जी ने किया, तो सुरभि आई, सुरभि को इंद्र बुला लाए। ये सुरभि का स्थान कहाँ था? गोलोक ना, वहां से आई, क्योंकि गौओं की ये माता है, ऐसा मत समझना। जिस प्रकार से इस ब्रह्मांड के अंतर्गत में भी हरि लोक अथवा रमाप्रिय वैकुंठ है, नहीं, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक है, और वो क्षीरोदशाई के तट पर है, देवता लोग भी नहीं दर्शन कर पाते, ब्रह्मा कभी ध्यान में उनका दर्शन करते हैं, और उन्हीं से सृष्टि शक्ति लाभ इत्यादि करते हैं, और पृथ्वी इत्यादि की रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से एक ब्रह्मांड में ही एक वो भी गोलोक है, जिसको सुरभि लोक कहते हैं। इंद्र वहां तक पहुंच सकते हैं, और इंद्र वहीं से इनको ले आए, जैसे आप गौ माता हैं और आप हमारे तरफ से कृष्ण से प्रार्थना करें, इसलिए वो गोलोक और ये गोलोक दोनों एक नहीं है। जैसे वो श्वेत द्वीप है गोलोक ब्रज में, जो वृंदावन का परिशिष्ट भाग जो है, जो कि नवद्वीप जिसको कहते हैं, वो श्वेत द्वीप वैकुंठ के ऊपरी भाग में गोलोक में स्थित है। वृंदावन की परिशिष्ट लीला वहां होती है, वो अलग है, और इसमें जो श्वेत द्वीप है वो हरि का लोक है, और इस ब्रह्मांड के अंतर्गत में है, उसमें क्षीरोदशाई विष्णु इसमें वास करते हैं। अब ऊपर में चलते हैं तो ये गोलोक धाम आ गया। गोलोक धाम का निचला भाग जो है, निचला भाग, उसको कहते हैं स्वकीय भाव, वहां पर रहता है राधा कृष्ण की लीला है, द्वारका से नीचे है, द्वारका से भी नीचे है, यहाँ पर भगवान की आश्चर्यमय लीलाएं हैं, और राधा कृष्ण होते हुए भी नारायण की जैसे ही है, विभूतिमय है। जो लोग राधा कृष्ण का वैधि भक्ति से अर्चन करते हैं, वैधि भक्ति से अर्चन करते हैं, उन लोगों को वही स्थान होता है, और जो लोग वैधि भक्ति प्लस रागानुगा दोनों से राधा कृष्ण का अर्चन करते हैं, वो लोग द्वारका जाते हैं। तो इससे बड़ा हुआ ना, इसलिए ये बड़ा हुआ। गोलोक में ही गोलोक का ही हिस्सा है, किंतु निचला हिस्सा है गोलोक, जो चारों तरफ से उसको घेरे हुए है, और उसके बीच में तब ये पड़ता है द्वारका धाम। यहाँ पर रागानुगा और वैधि भाव से नहीं, रागानुगा भाव से तो लोभ तो है, जरा अच्छी तरह से समझना, रागानुगा में लोभ है, किंतु करता है द्वारका की उपासना इत्यादि, रुक्मिणी इत्यादि का, उनको होता है द्वारका। और जिनको लोभ भी है और रागानुगा और वैधि दोनों मिलकर के करते हैं, उनको होता है मथुरा में। और जिनको लोभ है और रागानुगा भी सिद्ध रूप में करते हैं, वो ब्रज में जाते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार बोलते हैं, फिर से समझो, नोट कर लो हृदय में। जो लोग राधा कृष्ण का अर्चन करते हैं किंतु वैधि भक्ति से, उनको गोलोक में स्वकीय भाव से ऐश्वर्य में राधा कृष्ण की उपासना, ये तो ठीक है ना। जो लोग लोभ तो है किंतु वैधि भक्ति और उसमें वो करते हैं रुक्मिणी ध्यान इत्यादि करते हैं, उनके प्रति भी भक्ति है, तो उनको द्वारका की गति। किंतु राधा कृष्ण का ही पूजन करते हैं, क्यों होता है राधा कृष्ण का पूजन करके उनको वहां पर क्यों होता है द्वारका में, इसलिए कि राधा जी ही सत्यभामा के रूप में वहां पर प्रकटित है, इसलिए। और जिन लोगों को लोभ भी है और शुद्ध रागात्मिका का अनुगमन करके रागानुगा भक्ति का अनुशीलन करते हैं, उन लोगों को होता है वृंदावन में ब्रज में। वहां पर कमल का फूल का जो पंखुड़ी नहीं कर्णिका है, वो नंद भवन में ये लोग सब जाते हैं। और जो लोग रागानुगा में रूपानुग होते हैं, वो पंखुड़ियों में जो है वहां पर गोचारण में राधा जी का सखित्व वो लोग पाते हैं। ये लोग सबसे अधिक ये चीजें लाभ करते हैं। ऐसे जो कृष्ण हैं वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर राधा गोविंद गोपीनाथ कहलाते हैं, इन्हीं के द्वितीय वैभव हैं बलदेव जी। कृष्ण में और बलदेव जी में कोई भी अंतर नहीं, कृष्ण की लपटी, कृष्ण का मुर्मुख, कृष्ण का श्री अंग, गोपियों का श्री अंग, वृंदावन धाम, ये सब क्या है बलदेव जी,
गोपियों का श्री अंग,
सब कुछ वहां जोतना है, वो संधिनी का वो प्रकाश है जो सब, किंतु किस रूप में है उस पर बहुत विशेष विचार करें, साधारण रूप से विचार से नहीं। जब कृष्ण ही का इसी अंग जब है तो बाकी क्या रह गया, इसलिए सब कुछ संधनी शक्ति के अधिष्ठात्री ये बलदेव है, राधा जी हलावनी शक्ति के अधिष्ठात्री हैं, और कृष्ण चित शक्ति के अधिष्ठात्री, और तीनों मिलकर के सत चित आनंद ये कृष्ण का स्वरूप है, वो दोनों अलग उनसे नहीं है, तीनों मिलकर के एक। यहां पर बलदेव प्रभु जी कृष्ण के वैभव, यहां पर इनका चतुर्व्यूह नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्य भाव हो जाएगा, बलदेव प्रभु अकेले हैं, और इनसे ही नित्य सिद्ध नित्य परिकर ये सब कृष्ण की सेवा करने वाले सेवक लोग प्रकटित होते हैं। यही जब द्वारका में जाते हैं कृष्ण वसुदेव बन करके पार्थदेव, तो रोहिणी पुत्र वहां पर देवकी पुत्र जैसे कुछ हो जाते हैं। यहाँ शुद्ध देव रोहिणी पुत्र का अभिमान था इनका ना? और पिता कौन, नंद, नंद बाबा पिता, माताजी रोहिणी, पिताजी जैसे जगत में होता है, पर जगत में ऐसा पितृत्व नहीं, अभिमान होता है, इसलिए नंद बाबा को अतिरिक्त और किसी को पिता नहीं जानते हैं। वो जागतिक जो साधारण पंडित हैं वो इस चीज को ग्रहण नहीं कर सकते। मनोहरलाल शास्त्री और जितने पंडित यहाँ के हैं ना, वो अष्ट तीर्थ दस तीर्थ ये सब चीज को नहीं समझेंगे। ये अभिमान वहां पर प्रबल होता है, स्थूलत्व वहां पर प्रधान नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर मथुरा के पंडितों में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, ये वसुदेव के पुत्र हैं कि नंद के पुत्र हैं। यहाँ वाले कोई भी नहीं स्वीकार करते जो वो
नंदनंदन,
केवल मनोहर लाल शास्त्री स्वीकार करते हैं यहाँ वो, और इसीलिए पंडित समाज उन पर बिगड़ा हुआ है, उनको मारने के लिए धमकी देते हैं। वो कहते हैं मर जाएंगे किंतु हम नहीं मानेंगे जो वसुदेव, कहता मथुरा से चले जाइए। तो मथुरा में है ही कहाँ, हम तो वृंदावन में ही हैं। तो वंदे प्रभु जी कृष्ण के भक्त, जब वो वहाँ जाते हैं मथुरा और द्वारका जाते हैं, तो दोनों को अभिन्न मान करके वहाँ पर प्रथम चतुर्देव होता है, वहाँ पर संकर्षण वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और वो कृष्ण की सेवा सब समय करते हैं। कृष्ण की सेवा के लिए ही वो सर्वस्व उनका है, चाहे वो वृंदावन में रहे मथुरा में रहे और द्वारका में रहे। उन्हीं का एक और प्रकाश होता है, किसका, वासुदेव से वासुदेव यहाँ संकर्षण से मूल संकर्षण से महासंकर्षण, प्रद्युम्न माने कामदेव उनसे यहाँ पर प्रद्युम्न और अनिरुद्ध से अनिरुद्ध।
चतुर्भुव बोलते
कि उनका प्रकाश जो वहां पर काम करते हैं सेवा करते हैं नारायण, उनके चारों तरफ से व्यूह, व्यूह माने जो ये कार्य करता है उस कार्य को वो और बढ़ाते हैं। उनमें से जो महासंकर्षण है उनसे हो गए कर्णाब्धिशायी विष्णु, और कर्णाब्धिशायी विष्णु से
गर्भोदशायी,
और उनसे हुए
क्षीरोदशायी,
और क्षीरोदशायी करोड़ों रूप धारण करके करोड़ों जीवों में साक्षी और अंतर्यात्मा और परमात्मा के रूप में सबका नियंत्रण करने वाले, हम लोगों के हृदय में साक्षी रूप से वही बलदेव प्रभु जी हैं, किंतु यहाँ पर व्यष्टि रूप के अंतर्यामी रूप में यहाँ पर क्षीरोदशायी, क्षीरोदशायी माने खिरोद माने दूध, दूध कौन पिलाता है, मैया, अर्थात तो पालन का कार्य करते हैं, और उनके आसपास में ब्रह्मा और शंकर उन्हीं की इच्छा से उन्हीं की शक्ति से सृजन और संहार करते हैं। रह गया शेष उनका, वो शेष क्या करते हैं, समस्त ब्रह्मांड को अपने शिश पर करोड़ों करोड़ों सिर हैं, और उन पर सरसों की भांति ये सब ब्रह्मांड को, एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांडों को वो धारण किए हैं, और एक रूप से शेष रूपी सैया बन करके उस पर गर्भोदशायी शयन करते हैं। फिर कहीं गर्भोदशायी कर्णाब्धिशायी में वहां पर भी शेष बन करके उनकी भी सैया होते हैं। ये सब पांच प्रकार से इनके बलदेव प्रभु जी के ये प्रकाश है। पहला बलदेव प्रभु जी, दूसरा मूल संकर्षण, बलदेव प्रभु जी को छोड़ दो कृष्ण जैसे, अब मूल संकर्षण से चलो, मूल संकर्षण वृंदावन को छोड़ करके कहीं नहीं जाते, मूल संकर्षण द्वारका और मथुरा में, और वहां से महासंकर्षण हो या बैकुंठ में, गर्भ कर्णाब्धिशायी विष्णु, गर्भोदशायी विष्णु और क्षीरोदशायी विष्णु, और अंत में हुए
शेष।
इनका जो तत्व जान लेता है फिर कभी भी संसार चक्र में नहीं पड़ता। पुरुष इसलिए कहा गया जो संसारिक सृष्टि इत्यादि से इनका संबंध है, संबंध माने ये नहीं हुआ कि ये उसके अंतर्गत माया के अंतर्गत हो गए, माया के पति होते हुए भी संपर्क से जगत को ये संचालन करते हैं, सृष्टि संहार इत्यादि सब कार्यों का पालन पोषण ये सब कराते हैं, किंतु अपने उससे अलग रहते हैं, है सब में किसी में भी नहीं है। करते हैं सब कुछ, कराते हैं सब कुछ, किंतु कुछ भी नहीं करते ये जगत। इसलिए इनको पुरुषावतार कहा गया है। ये पुरुषावतार से ही मन्वंतर, मन्वंतरावतार, युगावतार और जितने भी अवतार होते हैं सब अवतारों के अवतारी हैं ये, कर्णाब दिशाई विष्णु या गर्भोदशाई, ये लोग भी अवतारी हैं, उनसे जो अवतार निकलते हैं। किंतु अवतारी होते भी ये अंश और कला, कला के कला भी कला है, किनके? बलदेव प्रभु के, और उनके भी मूल अंशी ये कृष्ण। बलदेव प्रभु जी जब ही भगवान आएंगे, किसी भी रूप में आएंगे, अंश रूप में भी आएंगे, तो धाम के रूप में, परिकर के रूप में जरूर आएंगे। इसलिए कृष्ण जब आते हैं तो पहले संकर्षण अर्थात बलदेव प्रभु जी देवकी के हृदय में आते हैं और गर्भ को उस रूप में प्रस्तुत करते हैं जहां पर स्वयं भगवान प्रकाशित हो सके, इसलिए धाम के रूप में पहले आए। कृष्ण वृंदावन में लीला करेंगे तो वो वृंदावन इत्यादि में आकर के वृंदावन ही हो जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। जो कि दृष्टि से यदि देखा जाए तो कभी पहले द्वापर युग आ गया आगे, और कभी आ गया त्रेता, कभी आ गया, कैसे आ गया? त्रेता युग जब रहेगा तो पहले कौन आएगा? द्वापर आएगा, फिर त्रेता अंत में आएगा, और अभी द्वापर है, अभी कली है, अभी आएगा त्रेता पहले, सब द्वापर आएगा। त्रेता युग में रामचंद्र जी आए, उसके पहले नर नारायण के रूप में आए। यहाँ नर माने क्या? नर है कौन?
अर्जुन।